हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। युवानी के जरिए ही सही, लेकिन आरव ने आयु को ढूंढ लिया था। वो एक अनाथ आश्रम में थी। आरव जानता था कि वो सीधे सीधे आयु को अपने साथ चलने के लिए कहेगा तो वो कभी हाँ नहीं कहेगी, इसलिए आरव ने दूसरा तरीका निकाला। आरव आयु के पीछे अनाथ आश्रम पहुँच गया था। उसने वहाँ की अथॉरिटी से कुछ देर बात की और फिर बाहर आ गया था। आरव आयु से दूर ऐसी जगह पर खड़ा हो गया था जहाँ उसे ठीक से देख सके। वो बस वहाँ तमाशा होने का इंतज़ार कर रहा था। आरव तो बाहर था, लेकिन उसने जो चिंगारी लगाई थी उसकी आग अनाथ आश्रम के ऑफिस रूम में लगी हुई थी। वहाँ की हेड सोनिया खन्ना और बाकी के ज़रूरी सदस्य ऑफिस के अंदर थे। उनके सामने अवनी सिर झुकाकर खड़ी हुई थी। सोनिया खन्ना काफ़ी गुस्से में लग रही थी। वो एक 60 साल के करीब औरत थी। उसने अवनी की तरफ देखकर सख्त आवाज़ में कहा, मिस अवनी, आपने हमसे कहा था कि आपकी फ्रेंड आयुष्का के पास रहने की जगह नहीं है, तब हमने उन्हें बेचारी समझकर यहाँ रहने दिया। ये अनाथ आश्रम बेसहारा लोगों के लिए है, हम उन्हें सहारा देते हैं, जबकि आपकी फ्रेंड का सच उससे बिल्कुल अलग है। वो लड़की इतनी रिच है कि किसी भी 5-स्टार होटल में आराम से रह सकती है। आपको इस तरह झूठी कहानी बताकर हमारे इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए था। सोनिया की बात सुनकर अवनी सकपक आ गई थी। आयु को वहां रुकने दिया जाए इसलिए उसने यही कहा था कि फिलहाल आयु के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और वो अनाथ है। अनाथ आश्रम का हिस्सा न होते हुए भी आयु को वहां रहने दिया गया था, क्योंकि उसकी कहानी सुनकर सोनिया का दिल पिघल गया था। तो अब सच्चाई पता चलने पर वो अवनी पर गुस्सा हो रही थी। सोनिया का साथ देते हुए उसके हस्बैंड मिस्टर खन्ना ने कहा, वो लड़की लुधियाना के टॉप टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में से एक जयसिंह ओब्रॉय की बेटी है और डिजायर्स के मालिक आरव खुराना की पत्नी। अब उन जैसे लोग ही अनाथ आश्रम में आकर रहने लगे तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? ये अमीर लोग बस अपनी फैमिली से लड़ झगड़ कर उन्हें सबक सिखाने के लिए दूर आ जाते हैं। अवनी, तुम खुद एक अनाथ हो और ये दर्द समझ सकती हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम झूठ बोलोगी। अवनी ने नजरें उठाई और भारी आवाज में कहा, आपको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था सर और मैम, लेकिन उस वक्त आयु के पास सच में कोई ठिकाना नहीं था। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने झूठ बोला। जो भी हो, अब उसे यहाँ से जाना होगा, सोनिया ने सिर हिलाकर कहा। आरव ने वहां जाकर आयु की सारी सच्चाई उन लोगों को बता दी थी। उसके बाद वे न सिर्फ अवनी से गुस्सा थे बल्कि आयु से भी नाराज थे। लेकिन मैम, अवनी ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन सोनिया ने उसे तीखी निगाहों से देखा तो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ, अवनी ने सिर झुकाकर कहा। अवनी मिस्टर और मिसेस खन्ना के साथ बाहर आई। उन्होंने देखा आयु कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी, तो वहीं आरव उन लोगों के ही बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। आरव के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उनको अपनी तरफ आता देखकर आयु उठकर खुद उनके पास चली गई थी। आयु के करीब आते ही सोनिया ने कहा, आयुष्का आरव खुराना, यही पहचान है ना तुम्हारी? तुम जैसे लोग ऐसे 10 अनाथ आश्रम को खरीद कर रख सकते हो, फिर यहाँ आकर रहने की क्या जरूरत है? अवनी ने आयु को यही कहा था कि वे लोग उसकी पहचान नहीं जानते हैं। उनके मुंह से अपना पूरा नाम सुनकर आयु ने अवनी की तरफ देखा तो उसने अपनी नजरें नीचे कर ली थीं। उसकी तरफ देखकर कोई फायदा नहीं है मिसेस खुराना, सच सामने आ गया है। ये तो शुक्र मानिए कि उन्होंने हमें सब बता दिया, वरना हमें तो कभी पता ही नहीं चलता। आपको यहाँ से जाना होगा। ये जगह आप जैसे अमीरों की वेकेशन स्पॉट बनाने के लिए नहीं है, जो अपने पति से नाराज होकर उन्हें परेशान करने के लिए दूर रहने आ जाती हैं, सोनिया ने गहरी सांस लेकर कहा। सोनिया की बातों से साफ पता चल रहा था कि उन्हें आयु के बारे में सच बताने वाला कोई और नहीं, आरव था। सोनिया के शब्द उसके नहीं बल्कि आरव के लग रहे थे। उसने यही कहा था कि उसकी पत्नी उससे नाराज होकर यहाँ पर रहने के लिए आई है। आयु को समझते देर नहीं लगी। उसने गुस्से में अपनी मुठ्ठियाँ कस ली थीं। वो उनके सामने बदतमीजी नहीं करना चाहती थी। खुद को शांत करने के लिए आयु ने 3 से 4 बार गहरी सांस लेकर छोड़ी। आयु ने दांत पीसते हुए लेकिन हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, चली जाऊंगी। मुझे अच्छे से पता है कि ये किसने किया होगा, बस आप बता दीजिए कि वो कहाँ है। अवनी हैरानी से आयु की तरफ देखने लगी, तो वहीं मिस्टर खन्ना और मिसेस खन्ना ने अपनी नजरें नीची कर ली थीं। आयु ने उन्हें देखकर सिर हिलाया और तेज आवाज में चिल्लाती हुई इधर उधर आरव को ढूंढने लगी थी। कहाँ हो तुम आरव खुराना? मुझे अच्छे से पता है कि ये सब तुमने किया है, तुम मुझे चैन से कहीं पर रहने क्यों नहीं देते हो? पहले मंथन के घर पर जानबूझ कर तुमने आग में घी डाला, तो अब यहाँ भी निकलवाने के लिए आ गए। अगर बात करनी थी तो सीधे सीधे भी कर सकते थे, ये सब करने की क्या जरूरत है? मैंने कहा बाहर निकल कर आओ। आयु पागलों की तरह गुस्से में चिल्लाते हुए आरव को ढूंढ रही थी। आरव आयु को आराम से सुन सकता था। उसके गुस्सा होने के बावजूद आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उल्टा उसे तो ये सब देखकर मजा आ रहा था। आरव एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वो बाहर निकल कर आया और आयु के पास जाकर भौहें उठाकर बोला, तो तुम्हें पता लग ही गया कि ये सब मैंने किया है? कितने अच्छे से जानने लगी हो ना तुम अपने डियर हस्बैंड को। आयु को गुस्सा आ रहा था और आरव की हरकतों के बाद उसका रोने का भी मन कर रहा था। उसकी आंखें नम होने लगी थी क्योंकि अब उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं रहा था। साथ ही वो अपनी फैमिली और आरव की हेल्प भी नहीं लेना चाहती थी। आयु ने भारी आवाज में कहा, आरव तुमने मुझे यहाँ से भी निकलवा दिया। वो आरव को शिकायत भरी निगाहों से देख रही थी। आरव ने उसे समझाते हुए कहा, आयु क्योंकि ऑर्फनेज बेसहारा लोगों के लिए होता है और तुम किसी भी तरह से बेसहारा नहीं हो। लोग क्या कहेंगे, ऑर्फनेज के ट्रस्टी की वाइफ खुद ऑर्फनेज में रह रही है। आयु हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी थी। आरव कितना भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्यों ना हो, लेकिन कहीं भी डोनेशन देना या इस तरह किसी भी ऑर्फनेज में इन्वेस्ट करना उसने पहले कभी नहीं किया था। देखा जाए तो आरव काफी सेल्फ सेंटर्ड था, जिसकी दुनिया उसके ही इर्द गिर्द घूमती थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आसपास की दुनिया में कौन कितनी मुसीबत में है। आयु ने भौहें उठाकर पूछा, और ये कब हुआ? तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना, ताकि तुम मुझे यहाँ से निकलवा सको। आयु को उसके इरादे समझते देर नहीं लगी थी। कुछ ऐसा ही समझ लो, आरव ने कंधे उठाकर कहा। अब तक भले ही वो हल्के लहजे में बात कर रहा हो, लेकिन अब आरव के चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। उसने अपने दोनों हाथों से आयु को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए सीरियस टोन में बोला, चलो आयु वापस अपने घर चलते हैं। तुम्हें किसी को भी कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता, मेरी हर एक चीज पर तुम्हारा हक है। मेरी प्रॉपर्टी तक आधी तुम्हारी है, तो तुम्हें बिना सोचे समझे मेरे घर आ जाना चाहिए था। आयु की नजरें नीची हो गई थी। आरव भले ही उसे अपनी प्रॉपर्टी और बाकी चीजों का बराबर हकदार मानता हो, लेकिन आयु के लिए ऐसा नहीं था।
आयु ने न में सिर हिलाया और कहा, नहीं आरव, तुम नहीं समझते इन सब बातों को। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जब दादी ने मुझे मंथन और तुम में से किसी एक को चूज करने के लिए कहा, तब मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन दादी गलत नहीं थी। मैंने उस दिन भी तुम्हें यही कहा था कि अगर अब मैं तुम्हारे साथ गई तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा, और आज भी यही कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ। मैं ठीक हूँ और अपने लिए कहीं और रहने की जगह ढूंढ लूंगी। आयु आरव को अपना फैसला सुनाकर वहां से जाने लगी कि आरव जल्दी से उसके पीछे गया और आयु का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आरव समझ गया था कि अब उसकी कोई भी दलील आयु को जाने से रोक नहीं सकती थी, लेकिन वो इतनी आसानी से उसे फिर से नहीं खो सकता था। आरव ने आयु के सामने आकर कहा, ये मत करो मिसेस खुराना, डिजायर्स और मुझे दोनों को ही तुम्हारी जरूरत है। आयु कल से शूट शुरू होने वाला है। तुम मेरे साथ रहने से इनकार कर सकती हो, लेकिन मेरे शूट के लिए मना नहीं कर सकती। फिर से शूट शुरू होने का सुनकर आयु के चेहरे पर चमक आ गई थी। वैसे भी वो पिछले दो दिनों से दूसरी नौकरी की तलाश में थी और उसे एक छोटी सी मामूली नौकरी भी नहीं मिली थी। आरव के कलेक्शन के लिए शूट करके उसे अच्छे खासे पैसे मिल सकते थे, जिससे वो अपनी नई शुरुआत कर सकती थी। वहीं आरव भी जानता था कि अब आयु किसी भी हाल में उसे मना नहीं करेगी। आयु ने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या शूट फिर से शुरू होने वाला है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हें बताने के लिए तो मेरे पास नहीं थी। पता है, तुम्हारी वजह से मैं कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं कर पाया, आरव ने शिकायती लहजे में कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ और मुझे शूटिंग करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं शूट शुरू होने का कब से वेट कर रही थी। मैं तुम्हारा कैटलॉग शूट जल्द से जल्द पूरा कर दूंगी, तो मुझे सैलरी भी मिल जाएगी, फिर मैं रहने के लिए एक अच्छी सी जगह रेंट पर ले सकती हूँ, आयु ने खुश होकर कहा। वो आरव के घर तो अभी भी नहीं जाना चाहती थी। आयु ने कुछ पल सोचा और पपी आइज बनाकर आरव की तरफ देखकर कहा, अच्छा आरव, तुम यहाँ के ट्रस्टी हो ना, प्लीज मेरे ऊपर एक छोटा सा फेवर कर दो, मुझे यहाँ रहने की परमिशन दिला दो। तुम कहोगे तो कोई मना नहीं करेगा। सारी मिसेस खुराना, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर यहाँ इतनी देर रुका हुआ हूँ तो तुम्हारी वजह से। मुझे किसी तरह की बहस नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ मेरे घर पर चल रही हो और वहीं पर रहने वाली हो, आरव ने भी अपना फैसला सुना दिया था। आयु जिद्दी थी तो आरव उससे ज्यादा जिद्दी था। आयु जानती थी कि वो इतनी आसानी से नहीं समझने वाला। कुछ पल रुककर आयु ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहने चलती हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आरव ने बोरियत भरे लहजे में कहा, हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम्हारी क्या शर्त होने वाली है। दे देना किराया, चलो अब मेरे साथ। आयु चौंकते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता मैं यही बोलने वाली हूँ? मिसेस खुराना, इतने दिनों में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानने लग गया हूँ। मुझे तो ये भी पता है कि आगे आपकी कौन सी शर्तें होने वाली हैं, आरव ने हल्के लहजे में कहा और आयु को अपने साथ चलने का इशारा किया। वे दोनों चलते हुए बात कर रहे थे। आयु ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा इतना पता है क्या? तो बताओ आगे मेरी क्या शर्तें रहने वाली हैं? अब तुम मुझे ये भी बोलोगी कि प्लीज़ शूटिंग का लोकेशन कहीं और शिफ्ट कर दो, क्योंकि तुम्हें मंथन से दूर रहना है। उसने जो कुछ भी किया उसकी वजह से तुम उससे गुस्सा हो, ब्ला ब्ला ब्ला। आरव बिल्कुल आयु के लहजे की नकल करते हुए बोल रहा था। उसकी इस हरकत पर आयु के होठों पर मुस्कराहट आ गई थी। सच में आयु उसे यही कहने वाली थी और उसके बिना ये भी कहेगी। आरव सब समझ गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव उसे इतना जानने लगेगा। आयु गाड़ी में बैठते हुए बोली, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से नहीं जानने लग गए तुम मुझे? क्यों नहीं, तुम मेरी वाइफ जो हो, वैसे जानने तो तुम भी मुझे अच्छे से लगी हो मिसेस खुराना, तभी बिना किसी के कुछ बताए खुद बहुत समझ गई थी कि ये सब मैंने ही किया है, आरव ने आयु को चिढ़ाते हुए कहा। आयु ने उसकी तरफ घूर कर देखा और सिर हिलाकर कहा, तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है, तुम्हारे हिसाब से जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और आज तुमने वही किया। जी नहीं मिसेस खुराना, मैं उंगली डालने जितनी मेहनत करता ही नहीं, डायरेक्ट चम्मच से ही निकाल लेता हूँ, आरव ने आईविंग करके जवाब दिया। रास्ते में भी उन दोनों के बीच मीठी नोकझोंक जारी थी। आयु सब कुछ भूलकर आरव के साथ जातू रही थी, लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो आरव के इस फेवर का बदला जरूर चुकाएगी। तो वहीं आरव के लिए इतना ही काफी था कि आयु उसके साथ जा रही है, कम से कम उसे अब आयु की टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ मंथन नहीं जानता था कि आयु मिल गई है। वो तो इस वक्त अनुष्का के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था ताकि अपने और आयु के रिश्ते को सही करने के बारे में उससे बात कर सके। आरव और आयु की शादी के साथ ही मंथन और आयु का रिश्ता कमजोर पड़ने में लगा था। मंथन नहीं जानता था कि उसकी ये गलती ने आरव और आयु के रिश्ते की नज़दीकी को थोड़ा और करीब कर दिया था।